जय हरि, जय राधा माधव, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन, जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Aaj hum padh rahe Shrimad Bhagavatam Chaturth Skanda Adhyay Kramank 29. Adhyay ka shirshak hai नारद तथा राजा प्राचीन भरी के मध्य वार्तालाप. श्लोक क्रमांक 54. ये श्लोक बहुत बड़ा है तो हम उसमें से थोड़ा सा भाग गाएंगे. सुमना समधर्मानां स्त्रीनां शरणाश्रमे पुष्पमधु गंधवत् सूत्रतम काम्यकर्म विपाकचम् सुमना समधर्मानां स्त्रीनां शरणाश्रमे पुष्पमधुगन्धवत् सूत्रतम् काम्यकर्म विपाकचम् सुमना सर्वधर्मानां स्त्रीनां शरणाश्रमे पुष्पमधुगन्धवच्छुद्रतमं कामकर्म विपाकजम्. सुमनासमधर्मानां स्त्रीनां शरणाश्रमे पुष्पमत सूत्रतमं काम्यकर्म विपाकजम् सुमना सर्वधर्मानां स्त्रीनां शरणाश्रमे पुष्पमधुगन्धवत् सूत्रतमं काम्यकर्म विपाकजम् सुमना समधर्माना स्त्रीनां शरणाश्रमे चुत्वाद मधुकंतवत् चुत्रतमं काम्यकर्म विपाकजम्. माते तो आगे श्लोक ऐसा है. कामसुखलवं जैवे उपस्थादि विचिन्वतं मिथुनी भूय तदभिनिवेशितमनसं षडंग्रे गणसामगीत वदितमनोहर वनिता आदिजनानाश्वेवतित रामती राममती लोकभितकर्णमग्नि वृकयुथ वदात्मनः आयुर्हरतो अहोरात्रान्तकालः लवविशेषान् विगण्य गुढ़ेशु विहरन्तं पृष्ठत एव परक्षमनु प्रवृतौ लुब्धकः कृतान्तोऽन्तशरेण यमिः परा विद्यति तमीम् आत्मानमहो राजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुमर्हसिति. शब्दार्थ सुमनः फूल समधर्मानां समान धर्म स्त्रीनां स्त्रियों की शरणे शरण में आश्रमे गृहस्थ जीवन, पुष्प फूलों में, मधु शहद की, गंध सुगंध, वत सदृश्य, शूद्रतमम अत्यंत शूद्र, काम्य इच्छित, कर्म कर्मों का, विपाकजम हे फलस्वरूप प्राप्त, कामसुख इंद्रुप्तिका, लवम एक खंड, जैवय जिह्वासुख, ओपस्थ संभोग सुख आदि इत्यादि विचिन्वंतम सदैव चिंतन करते हुए मिथुनी भूय संभोगरत तत् अपनी पत्नी के साथ अभिनिवेशित सदैव मग्न मनसम जिसका मन षडंग्री भोरों का गन समूह साम मधुर गीत गुंजार वत सदृश्य अति अत्यंत मनोहर आकर्षक वनितादि पत्नी इत्यादि जन लोगों का आलापेशु बातों में अतितराम अत्यधिक अति अधिक प्रलोभित आसक्त करणम जिसे कान अग्रे आगे वृकयुथ भेड़ियों का झुंड वत सदृश्य आत्मनः अपने आप का आयु उम्र हरत हरण करते हुए अहरात्रान दिन तथा राते तान वेसव काललव काललव विशेषान समय की क्षण अविगन्य बिना विचारे गृहेशु गृहस्थ जीवन में विहरंतम भोक्ते या विहार करते पृष्ठतः पीछे से एव निश्चय ही परोक्षम अदृश्य रूप से अनुप्रवृत्त पीछा करते हुए लुब्धकः शिकारी कृतंत यमराज अंतः हृदय में शरेण बांसे यम जिसको यह इस संसार में पराविद्यति भेदता है तम उस इमं यह आत्मानं अपने आप अहो राजन हे राजा भिन्न हृदयम विदे हुए हृदय वाला दृष्टुम देखने के लिए अर्हसि तुम्हें चाहिए इति इस प्रकार अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद हे राजन स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। जीव कामच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और उस प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जिह्वा से लेकर शिश्न तक इंद्रत्वती का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए वह सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये उन भौरों की मधुर गुंजार की तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे न तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और न उसे यमराज की ही परवाह रहती है जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट में घिरे हो। तात्पर्य भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना, और यह विस्मरण गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से बढ़ जाता है। गृहस्थ आश्रम में युवक किसी युवा सुंदरी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अनेक बच्चों को जन्म देने तथा वृद्ध होते जाने पर पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक वस्तुओं की मांग करती है। उस समय पत्नी उसी व्यक्ति को जिसने उसे युवावस्था में स्वीकार किया था घृणित लगने लगती है। कोई भी मनुष्य दो कारणों से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है, पति पत्नी की रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है, पत्नी पति की रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है और रात्रि में वह उसे काम सुख प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन्हीं दो बातों का चिंतन करता रहता है, स्वादिष्ट भोजन तथा काम सुख। पत्नी की बातें परिवार का विनोद करने वाली होती है तथा बच्चों की बातें जीव को आकृष्ट करती है। इस प्रकार वह यह भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है और अनुकूल शरीर में प्रवेश पाने के लिए अगले जीवन की तैयारी करनी है। उद्यान में स्थित हिरण अन्युक्ति के रूप में प्रयुक्त है, जिससे नारद मुनि राजा को बताना चाहते हैं कि राजा स्वयं इसी प्रकार की परिस्थितियों से घिरा है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी की ऐसी ही पारिवारिक स्थिति है जो उसे पथभ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार जीव इसे भूल जाता है कि उसे भगवान के धाम वापस जाना है, वह केवल पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इंगित किया है, हितात्म बातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रय। गृहस्थ जीवन अंधकूप के सदृश है जिसमें गिरकर मनुष्य असहाय होकर मर जाता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक रहते तथा बलवान रहते हुए मनुष्य को गृहस्थाश्रम त्याग देना चाहिए और वृंदावन जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक आयु विशेष में 50 वर्ष पर वानप्रस्थ ग्रहण करके अंत में सन्यासी रूप में अकेले रहना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता की संसुत विधि है जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते। जब गृहस्थ जीवन को भोग कर कोई संन्यास ग्रहण करता है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। मनुष्य को अपने पारिवारिक या सांसारिक जीवन में अपनी स्थिति को समझना चाहिए। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। उसे अपने जीव के स्वाद को पूरा करने तथा पत्नी के साथ संभोग करने में ही नहीं फंसे रहना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक अवस्था विशेष में परिवार को त्यागना ही पड़ता है, यदि आवश्यक हुआ तो बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वैदिक जीवन के तथाकथित अनुयायी जीवन के अंतकाल तक भी अपना परिवार नहीं त्यागते, जब तक मृत्यु उसे विवश नहीं कर देती। सामाजिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और समाज को चारों वर्णों तथा चार आश्रम वाले वैदिक सिद्धांतों को फिर से अपनाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषेण। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है और मैं आपके आशीर्वचन की याचना करता हूँ जिसके द्वारा मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाऊँ। तो बहुत ही गंभीर श्लोक है और मेरी तो कोई योग्यता नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कुछ बोलूँ। तो ये श्लोक में पूरा भौतिक जगत का परिचय दिया है संक्षिप्त रूप में, शुरुआत से लेकर अंत तक कैसा व्यक्ति का भौतिक जीवन रहता है। तो ये सब जीवों के लिए लागू होता है जो भगवान को भूल चुके हैं, लेकिन जो भगवान के परम भक्त हैं उनकी कृपा से हम इस जो जन्म मृत्यु के चक्कर है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। और वही प्रयास यहाँ पर नारद मुनि कर रहे प्राचीन भरे ऋषि के लिए, और उनको वो अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं और पहले बहुत समझा चुके हैं, फिर भी अभी उनको एक उदाहरण देकर वो अगला उदाहरण देके समझा रहे। वो है हरिण के बारे में, हिरण के बारे में। तो हिरण बहुत तेज से भागता है, उसे शेर भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन वही हिरण कब पकड़ा जाता है? जब अच्छा बगीचा हो और दूसरा कोई हिरण रहे वहाँ पर, तो वो जब बगीचे को देखता है, वहाँ के फूल की सुगंध सूंघता है और वहाँ पर उसे दूसरी हिरण दिखती है, तब वो भागने का भूल जाता है और वहीं पर वो मंडराता रहता है। और ऐसे समय क्या होता है, उसे दो नुकसान पहुँचने वाले वहाँ पर लोग होते हैं। एक होता है भेड़िया जो हिरण को खाता है, वो वहाँ पर उपस्थित रहता है, और दूसरा है जो शिकारी, वो अपना बाण अपनी धनुष को लगाकर उसे मारने के लिए खड़ा है। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति का यही हाल है। अभी पुरुष के लिए स्त्री स्त्री है, लेकिन स्त्री के लिए भी पुरुष एक ही स्त्री के समान ही, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमें भगवान से दूर लेके जा रहा है वो स्त्री के तुल्य ही है। तो भगवान अकेले ही पुरुष है, बाकी सब क्या है, स्त्री है। तो ये शास्त्र का कथन है, एकल ईश्वर कृष्ण आरसव प्रत्य। तो भगवान कृष्ण ही एकल भगवान पुरुष और हम सब उनकी प्रकृति। तो हमें एक दूसरे को भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है या भौतिक संसार के बारे में बताया जाए, ये कामुक व्यक्तियों के लिए है। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं अपने सिर्फ जीवा और उपस्थ इन चीज़ों के संतुष्टि के लिए, ऐसे व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। और ये भक्तों के लिए लागू नहीं होता। जो भक्त दाम्पत्य है, जिसमें परिवार में पत्नी और पति दोनों ही भगवान की सेवा के लिए आतुर है, लालायत है, उनके लिए ये आकर्षण उनके ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का जो केंद्र बिंदु है उसे भगवान को बनाया। लेकिन भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति है वो अपना केंद्र बिंदु इंद्र तृप्ति ही बनाता है। तो इसलिए उनका गृहस्थ आश्रम रहे या उनका वैराग्य रहे, वो सब क्या है, निम्न स्तर का है। हालांकि हम देखते हैं कि बाहर के जगत में भी कुछ कुछ लोग वैराग्य बन जाते हैं, लेकिन उनका इंद्रिय तृप्ति ही केंद्र बिंदु है, तब उनका वैराग्य भी कुछ काम का नहीं। वो हालांकि दिख रहे कि स्त्री या धन ये सब त्याग कर दिए, लेकिन उनका केंद्र बिंदु क्या है? इंद्रियोत्पत्ति, और सबसे बड़ा है अहंकार, उसके भोग के लिए वो प्रयत्न करते। तो ऐसा जीवन भी कुछ लाभ का नहीं। तो इसलिए हमें ऐसा पंथ स्वीकार करना है जिसमें भगवान को हम केंद्र बिंदु बना सकते, और वो हमें प्राप्त होगा वो शिक्षा एक सदगुरु के द्वारा। जो गुरु कृष्ण के सेवा में रत है और वो अपने शिष्यों को भी भगवान की सेवा में लगा थे, ऐसे गुरुओं का अगर हमें आश्रय मिल जाए तो हमारा भौतिक जीवन संपुष्ट में आ जाए, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सातों में बता रहे हैं कि भौतिक जीवन क्या है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भौतिक जीवन का अर्थ क्या है, कि भगवान का दास ये जो स्वाभाविक स्थिति है उसको भूलना, यही भौतिक जीवन है और कुछ नहीं। और भगवान और प्रभुपाद जी बताते हैं इस भौतिक जीवन से हम कैसा बाहर आ सकते हैं, वो है हमारी बुद्धि का उपयोग करके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि असली बुद्धि क्या है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, वन हैज टू अंडरस्टैंड वन्स पोजिशन इन फैमिली और इन वर्ल्ड। तो भगवान जो भक्त है उसे जानना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। तो उसकी स्थिति क्या है, उसे एक दिन ये जगत छोड़ के जाना है। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हमारे असली बुद्धि है कि हमें भगवान की तरफ मुड़ना है। और बाद में प्रभुपाद जी बताते कि भगवान को अगर किसी को याद करना है तो उसे सहज मार्ग है, वो है वर्णाश्रम धर्म का पालन कर। जिस वर्णाश्रम संस्था में व्यक्ति को हल्के हल्के धीरे धीरे उसकी आगे प्रगति की जाती। तो जो भौतिक जीवन है उसमें क्या है, हम भगवान को भूलते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित जीवन है उसका क्या मतलब है, उसे हम भगवान को स्मरण करते हैं। और भौतिक जीवन में हम क्या याद रखते हैं कि मैं शरीर हूं, लेकिन कृष्ण भावना भावित जीवन में हमें क्या याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो ये चीजें हमें याद और भूलने की आवश्यकता है। तो भौतिक जीवन में व्यक्ति अपने इंद्रियों का दास बनता है, और इंद्रियां कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इसके द्वारा मनुष्य खुद को अपना जीवन उनको संतुष्ट करने में लगा देता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हिरण किस प्रकार से वहाँ स्तब्ध हो गए जब उसे वहाँ बगीचे में फूल सुंदर सुगंध वगैरह आया, और या उसे एक हिरण का दृष्टि हिरण का दिखाई दिया तो उसे वह भूल गया कि उसे भागना है वहां से। उसी प्रकार भौतिक जगत में लोगों की इंद्रिय तृप्ति में ही पूरा दिन चला जाता है, और उस समय उसे इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का प्रयास वो बिल्कुल करता नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो प्राणी है उनका एक एक इंद्रिय की वजह से उनका जीवन संकट में आता है। जैसा हम देखते हैं कि जो मछली है उसका जिह्वा कमजोर होता है, हालांकि उसको नदी में बहुत कुछ खाने के लिए रहता है, लेकिन जब वहां पर शिकारी आता है और कुछ मांस अपनी काटे को लगाकर पानी में छोड़ता है तो मछली को लगता है कि ये खाद्य मेरे लिए ही बनाया हो। हालांकि उसे दूसरी जगह कष्ट करना पड़ता है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आसानी से उसे मांस का टुकड़ा मिल रहा है खाने के लिए, और अनजाने में अपने जिह्वा के लोभ के वजह से वो मांस खा लेता है, और मांस के साथ वो काटा भी खा लेता। और शिकारी जब देखता है कि उस काटे को लगी हुई रस्सी अंदर की तरफ खींची जा रही है तो उसे पता चलता है कि इसमें एक मछली अटक गई, और उस समय वो शिकारी कुछ दया न दिखाते हुए जोर से वो रस्सी को खींचता है, और ये मछली खाकर अच्छे से तैर रही होती, उसे लगा कि मेरा पेट भर गया है, लेकिन अचानक से जब वो रस्सी खींची जाती तो उसका पेट फाड़ कर वो मछली बाहर आती। तो इस प्रकार वो अपनी जिह्वा के वजह से संकट में गिर जाती। उसी प्रकार अन्य जीव है, जैसा स्मेल या सुगंध के लिए जो भौरा इतना ताकतवर होता है कि वो लकड़ी को छेद कर सकता है, और लकड़ी तो इतना हार्ड होता है, वही भौरा जब कमल के फूल में बैठ जाता है तो वो उतने सुगंध से मदमस्त हो जाता है कि वो उसको छेद करना भूल जाता है। और जब रात को कमल सिकुड़ जाता है तो ये भौरा उसके अंदर ही मर जाता है। हालांकि भौरे के अंदर ताकत होती है लकड़ी को छेद करने की, तो कमल को छेद करना तो उसके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो सुगंध में इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि उसे उसका बुद्धि का विस्मरण हो जाता है कि उसके अंदर वो ताकत है उसको छेद करने। और ऐसे ही एकदम दुर्दैव के द्वारा वो उसी में ही मर जाता है। जब अगले दिन सूरज उगता है और कमल का फूल खिलता है तो उसके अंदर भौरे मरे हुए रहते, तो ये सुगंध के वजह से भौरों का मृत्यु की तरफ प्रदार्पण करते। और तीसरा है आंख। जब पतंग देखता है कि कहीं ज्वाला भड़क रही है तो उसे लगता है कि ये मेरे लिए बना है, और हालांकि वो देखता है कि दौड़ते हुए जा रहे हैं उसके ग्रैंडफादर, उसके फादर और अन्य अन्य जो उसके रिश्तेदार है, वो सब दौड़कर वो अग्नि में भस्म हो चुके, फिर भी इसे लगता है कि मेरा भस्म नहीं, मैं भस्म नहीं होगा, और वो तेजी से उसके अंदर छलांग लगाते और वो भी मर जाता है। तो ये उसकी आंखों की कमजोरी के कारण ये मर जाता है। और चौथा है कान। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है हरिन के द्वारा। जो हरिन हिरण इतना तेजी से भाग सकता है, लेकिन जब वो शिकारी की मधुर बांसुरी सुनता है तो भागना भूल जाता है, वो सिर्फ वो धनिये को आकर्षित होकर वहाँ पर ही वो मदमस्त हो जाता है। और जब शिकारी उसे देखता है कि वो भाग नहीं रहा है, उसे पकड़ लिया जाता है। और पांचवा है त्वचा। तो हाथी इतना प्रबल है कि वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन जब वो हाथी को एक सिकाऊ हथनी के द्वारा स्पर्श किया जाता है और वो हाथी उसके इंद्रिय सुख के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, तो वो जो सिकाऊ हथनी है वो गड्ढे के साइड से निकल जाती है, और जो गड्ढे के ऊपर बांबू और घास फैला जाते वो हाथी को दिखाई नहीं देते, और तेजी से हथनी के पीछे भागते भागते वो गड्ढे में जाकर गिर जाता है। और बाद में उसे भूखा रखा जाता है 7-8 दिन, और जब वो कमजोर हो जाता है उसको पिटाई करते हुए फिर माहौत लोग उसको पकड़कर उसको जन्म के लिए उनका दास बना देते। तो हम देखते हैं कि ये प्राणियों में एक एक इंद्रिय अवयव का कमजोरी होने के कारण इतना वो संकट में गिर रहे। तो मनुष्य ये पांचों इंद्रियों से क्या है, कमजोर है। उसे खाने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा होती है, या आंखों के लिए अलग अलग फिल्म वगैरह देखने की इच्छा होती है, या कानों के लिए अलग अलग म्यूजिक रेडियो वगैरह सुनने की इच्छा होती है, और त्वचा के लिए अलग अलग प्रकार के स्पा सेंटर या अलग अलग मसाज सेंटर में जाता है, और इस प्रकार और सुगंध के लिए अलग अलग डिओड्रेंट वगैरह यूज करता है। तो इस प्रकार से वो पांचों इंद्रियों के द्वारा क्या है, कमजोर बना जा रहा है। तो उसकी अवस्था तो और दयनीय है। तो इसी प्रकार वो ऐसे ही अपने इंद्रिय तर्पण में पूरा जीवन व्यस्तता से लगा देता है, और ऐसे करते करते उसका मृत्यु नजदीक आता है। तो इसे ही भौतिक जीवन बताया गया, लेकिन इसके विपरीत है आध्यात्मिक जीवन। तो जो भगवान के भक्त है वो लोग ऐसा इंद्रिय तर्पण में लगे नहीं रहते, वो हर शरीर का हर अवयव भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते, और इसे ही असली बुद्धिमत्ता बोली जाती। अगर हमारे जिह्वा है उसे किस में लगाना चाहिए, भगवान के गुणगान में। तो प्रसिद्ध श्लोक है जो आता है दशम स्कंद में, जब नलकुबेर का उद्धार होता है भगवान के द्वारा, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो बोलते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथा। तो वो भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते बोलते हैं, भगवान हमारी वाणी आपकी प्रशंसा में ही लगी रहे, आपके नाम जप में ही हमारी वाणी लगी रहे। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा भगवान के गुणगान में लगा देता है तो उसे भगवान का थाम प्राप्त होता है। और वो क्या बोलते हैं, हमारे कान किस चीज में लगनी चाहिए, आपके गुणगान सुनने में। तो भगवान के गुणगान ये अमृत के समान है। जैसा मृत व्यक्ति कोई होता है उसे अमृत पिलाया जाता है, वो जीवित हो जाता है, उसी प्रकार हम आध्यात्मिक जीवन में मृत प्राय है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में जीवंत करने के लिए, जिंदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा अमृत पिलाना चाहिए, तव कथा अमृत, भगवान के लीलाओं का श्रवण। अगर वो हम करेंगे, वो अमृत हमारे अंदर जाएगा तो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होगी और हमारा आध्यात्मिक जीवन हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार आंखों से हमें क्या देखना है, सिर्फ भगवान के दर्शन और भगवान के भक्तों का दर्शन, यही हमारे आंखों की उत्सव है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान को देखना और भक्तों को देखना ये आंखों के लिए क्या है, नेत्रोत्सव। तो यही हमारे आंखों के लिए उत्सव है। जैसा जगन्नाथपुरी में भगवान जब अनावसर में भक्तों से दूर जाते हैं 15 दिन के लिए, और उसके बाद जब उनका दर्शन होता है तो उस दर्शन को बोला जाता है नेत्रोत्सव। तो ये सब लोगों के आंखों का उत्सव है भगवान को देखना। तो ये लाभ हमें प्राप्त होता है। तो भगवान को देखने के बाद हमें अन्य किसी यमराज को देखने की जरूरत नहीं गिरेगी, लेकिन अगर हम भगवान को नहीं देखेंगे तो हमें यमराज का दर्शन होगा। और उसी प्रकार हमारी जिह्वा हुए कान, जो स्मेल है, नाकों से सुगंध लेना है नाक से, वो है भगवान को अर्पण किया हुआ तुलसी। जैसे चार कुमार जब भगवान की तुलसी का सुगंध लेते हैं तो वो पूरे तरह से भक्ति में आप्लायित हो जाते, हालांकि वो पहले ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन जब वो भगवान के चरणों की सुगंध, तुलसी का सुगंध लेते तो पूर्णतः भगवान के अनन्य भक्त बन जाते। तो इसी प्रकार जो त्वचा है उसे भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सवे मन कृष्ण पदारविंद वांसांस वैकुंठ गुणार्थवर्णन, जैसे अम्बरीश महाराज पूरी प्रकार से भगवान को नवविधा भक्ति में लगे हुए थे, उसी प्रकार अगर हम भी भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो ऐसा कोई गृहस्थ आश्रम करता है कि जहां पर वो अपनी पूरी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा देता है तो वो कभी भी अंधकूप में नहीं गिरेगा। उसके लिए क्या है, उसे भगवत धाम प्राप्त होता है। जैसा समझो गुरु को कर्णधार किया है किसी व्यक्ति ने, जो उसका शरीर एक बोट है, तो वो बोट भगवान के धाम में ही लेके जाएंगे गुरु। लेकिन कोई व्यक्ति गुरु को छोड़कर अपने मनमानी से अपने शरीर के इंद्रियों में लग जाता है तो उसका हाल कैसा है, एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाता है और उसे बचा कोई नहीं बचा सकता। और भौतिक जीवन ऐसा ही, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को उसका अनुगमन कर रहा है तो उनका निश्चित क्या है, गंतव्य स्थान एक अंधकूप ही, सब वो कुएं में गिरने वाले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु के शरण जाकर उनके दिए गए अनुसार, उनके दिए गए मार्गदर्शन को अगर वो अनुगमन करता है तो वो अपने साथ अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर गृहस्थी सबको भगवत धाम लेके जा सकता है। और यही असली शिक्षा है आध्यात्मिक जीवन में। तो हम देखते हैं जैसे भक्तिविनोद ठाकुर वगैरह बोलते हैं, गृहते गोलोक भाय, वो बोलते हैं मेरा घर एक गोलोक के समान है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि उस ग्रह में, उस घर में उनकी पत्नी उनको भगवान का स्मरण करती है, कराती है, उस घर में उनके बच्चे उनको भगवान का स्मरण कराते हैं, और उसी घर में वो भी भगवान का स्मरण करते हैं। सुबह उठकर वो भगवान का नहलाते, भगवान को दर्शन कराते, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और बाकी सब लोग वहाँ पर आरती करते हैं, भगवान को भोग अर्पण कर प्रसाद खिलाते। तो ये है भगवान के भक्तों का घर। और दूसरा जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसके घर में भी एक अर्चविग्रह होता है जिसकी सुबह शाम लोग क्या करते, पूजा करते, वो क्या है, टीवी, हाँ टीवी चालू हो जाता है सुबह प्रातः काल से, टीवी चालू होता है उसमें अलग अलग दर्शन होते हैं, हाँ इतने सारे चैनल्स होते हैं वो सब देखते रहते हैं एक के बाद एक। अभी तो उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी टीवी कहाँ पर आ गया, अपने मोबाइल में, हर एक का अपना अपना एक डीटी है, हाँ तो लोग अपने अपना अर्चना चलते रहते हैं, नहाते नहीं धोते नहीं कुछ नहीं, दिन भर उसमें लगे रहते हैं और उतना समय उसमें गवाते हैं। तो अगर उस प्रकार से अगर हम हमारा समय बिताएंगे तो हम अंधकूप में करेंगे, लेकिन अगर हम हमारा जीवन भगवान के कीर्तन, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा इसमें अगर हम लगाते रहेंगे तो हम हमारा जो गृहस्थाश्रम है वो असली में एक भगवान की सेवा करने का आश्रम है। तो हम उदाहरण में देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर, अमरीश महाराज, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, श्रीधर कोलावेचा, ये सब गृह गृहस्थी में थे लेकिन वो भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया था। तो उसी प्रकार हर आश्रम में व्यक्ति को भगवान का, भगवान को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम, हमारे इंद्रियों के द्वारा हमें फंसाया जाएगा और हमारे इंद्रिय हमें नरक की तरफ लेके जाएगी। तो यही इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें ये इंद्रिय भगवत धाम लेके जा सकते। तो सर्व उपाधि विमुक्तम तत्परित्व निर्मूलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अगर हम सब उपाधि को त्याग कर कर, वो तो उपाधि कौन सी है, भौतिक उपाधि, इनको त्याग कर कर मैं भगवान का दास हूँ ये उपाधि भी स्वीकार कर कर अगर हम हमारे पूरी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएंगे तो ही वो भक्ति है और ये भक्ति हमें भगवान के धाम लेके जाएगी। तो इसीलिए सब जो गुरुजन है उनका एक ही उपदेश अपने अनुयायियों के लिए रहता है कि वो भगवान का सदैव सेवा करें। जैसे यहाँ पर नारद मुनि प्राचीन भरी को बता रहे, तो उपदेशामृत में भी प्रभु स्वामी एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें देते हैं, वो है तवन तन्नाम रूपचरितो सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण मनसा नियोज्य तिष्ठन व्रजे जननानुरागी जननानुगामी कालम नैव अखिलम इत्युपदेश सार। तो ये हमें शिक्षा देते हैं रूप गोस्वामी उपदेशामृत। तो वो बताते हैं कि सब शिक्षाओं का स्तर क्या है, कि व्यक्तियों को अपना 24 घंटा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उनका नाम स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए। तो भगवान के जो गुण, लीला और सब कार्य है उसे हमें स्मरण करना चाहिए, अपने जीवा के द्वारा उनका गुणगान करना चाहिए और अपने मन के द्वारा उसका, उनका स्मरण करना चाहिए। और इसी प्रकार जो भगवान के अनन्य भक्त है गोलोक में या ब्रजधाम में, उनका अनुगमन करते हुए, उन्होंने जैसा भगवान की सेवा की, प्रेम में सेवा की, उसी प्रकार हम भी उनके चरण कमलों का अनुगमन करते हुए हम भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यही उपदेश हर आचार्य देते, जो नारद मुनि भी यहाँ पर उपदेश दे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और मनमानी से भौतिक जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो उसका उदाहरण दिया गया है कि जो बुचर क्या बोलते हिंदी में, क्या बोलते, कसाई खाने के सामने भेड़ बकरियां लगी रहती है, तो वो बकरी देखती है कि मेरा पड़ोस की बकरी आज नहीं है और उसके दूर वाली बकरी वो भी नहीं, ऐसे करते करते वो चारा खा रही है लेकिन एक दिन उसको भी लेके चले जाएंगे और उसकी अगली वाली बकरी सोचती कि वो नहीं दिख रही लेकिन वो भूल जाते कि मेरा भी नंबर आने वाला। तो उसी प्रकार अगर हम सोचेंगे कि हमारे परनाना, उसके पहले के जो व्यक्ति है वो सब अभी यहाँ पर नहीं और आगे जाके हम भी नहीं रहने वाले, तो हमें सतर्क होना चाहिए कि मुझे भी एक दिन मृत्यु को सामना करना पड़ेगा लेकिन मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इसका नतीजा किस पे आधारित है, हम हमारा जीवन कैसा बिता रहे हैं। अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की अनन्य रूप से सेवा करेंगे तभी गुरुजनों के दिए हुए मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो हमारा गंतव्य स्थान भगवान का धाम होगा। अगर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अवश्य ही अंधकूप में गिर जाएंगे। तो इसी के दृष्टांत में तुकाराम महाराज जी एक अभंग बताते हैं, धन मेळुनी कोटी सवे नये रे लंगोटी पाने खाशील उदंड अंती जाशी सुकल्या तुंड पलंग नाहल्या सुपती शेवटी गोवर्या सांगती तुका मने राम एक विसरता श्रम। तो तुकाराम महाराज यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे, वो बोल रहे हैं धन मेळुनी कोटी, अगर तुम करोड़ों करोड़ों रुपए भी अगर कमाओगे तो क्या होगा, सवे नये रे लंगोटी, साथ में एक कोपिन भी नहीं जाएगा तुम्हारी। हाँ, तो ऐसा तुकाराम महाराज बता रहे। और क्या बोल रहे, पाने खाशील उदंड, अगर तुम जिंदा समय बहुत सारे पान खाओगे या कुछ भी खाते रहोगे, लेकिन क्या होगा, अंति जाशी सुकल्या तुंड, जब तुम मर जाओगे तुम्हारा मुंह सूखा रहेगा, उस समय पान नहीं खाओगे तुम ऐसे ही सूखे मुंह से मरोगे। पलंग नाहल्या सुपति शेवटी गोवर्या संगति, अभी तुम्हें सोने के लिए अच्छा अच्छा पलंग है, अच्छे अच्छे गादी है और बहुत सारे तकिया है, ये सब कुछ है, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या आएगा, गौर्या, गौर्या माने कंडे, जो गाय के कंडे होते वो तुम्हारे साथ आएंगे, उसी पे लोग जलाते पहले के जमाने में, अभी लोग टायर डाल देते, अगर जल रही नहीं जल रहा तो उसके ऊपर टायर पेट्रोल रॉकेल ऐसा डालकर जला देते, लेकिन पहले ऐसा नहीं, गौर्या जलाते थे, अभी वो भी नसीब नहीं होता। तो ये सब क्यों हो रहा है, तुका मने राम एक विसरता शो, तुकाराम महाराज बोल रहे ये कब होगा, जब तुम भगवान को भूल जाओगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो जितना भी वो जीवन में किया है वो क्या है, सिर्फ एक श्रम है, श्रम ये वही केवल, वो कैसा श्रम है, जैसा गधा दिन रात धोबी का सामान उठाते रहते और उसे खाने के लिए कुछ घास भी नहीं मिलता, वो फुगट वो फ्री में बस दिन रात वो मालिक की सेवा करते रहे, उसी प्रकार हमारा भी जीवन भी, हम इतना दूसरों के लिए करने का प्रयास कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, इतना हम पढ़ाई कर रहे, इतना हम जॉब कर रहे या कुछ भी कर रहे, अगर ये सब कर कर अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति स्मरण नहीं आएगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, वो सिर्फ एक श्रम है, श्रम है ये व्यक्ति। तो इसलिए हमें हमारा जीवन ऐसा वेस्ट नहीं करना है। तो हमें जो हमारे गुरुजन जैसे नारद मुनि यहाँ पर सचेत कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रभुपाद जी हमें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हम कैसा भगवान को याद कर सकते। तो भगवान का हम सदैव याद कर सकते हैं उनके नाम गुण रूप लीला के बारे में जानकर, और यही लाभ अगर हम दूसरों को भी देंगे तो वो लोगों का जीवन भी सफल हो जाएगा। और ये जो भगवान की शिक्षाओं का जो सार है वो प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों में उद्धृत किया है, और यही कथा यही ग्रंथ किसी को मिल जाता है तो उसे ये अनमोल शिक्षा प्राप्त होते और उस व्यक्ति का भौतिक जीवन का परिवर्तन एक आध्यात्मिक जीवन में हो जाता है। तो यही मैराथन में सब भक्तों की चेष्टा है, प्रयत्न है कि हम व्यक्तियों को दूसरे लोगों को ये भगवान के भगवद्धाम का मार्ग की जो कुंजी है, ये भगवान के प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, उसे अगर हम किसी को देंगे तो उनके लिए भगवान धाम के द्वार खुल जाएंगे। तो उसी लिए हमें भी अथक प्रयास कर खुद को ये जीवन में उतारना है, और ये अगर हम जीवन में उतारेंगे तो दूसरों को भी हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आपकी आशीर्वाद की याचना करता हूँ। मैं भी ये बोलने के लिए आसान है, लेकिन कृष्ण भावानुभावित होना बहुत, उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, इंद्रियोक्ति करने से बचना पड़ेगा। अगर ऐसे हम करते रहेंगे तो अवश्य ही एक दिन हमें भगवान और भगवान के भक्तों की असीम कृपा प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।